ओम शांति। दस भिक्षु सत्य की तलाश में निकले, बहुत सी पहाड़ियों पर घूमे, आश्रमों में घूमे, कंदराओं में गए, बहुत से तीर्थ स्थानों पर गए, परंतु सत्य का कोई भी सुराग, सत्य की कोई भी झलक उन्हें नहीं मिली और निराश होकर वह दसों भिक्षु वापस अपने ही गांव आ गए और मिल भी नहीं सकता सत्य, क्योंकि सत्य जो भीतर है वो बाहर की वस्तुओं में कैसे मिलेगा, सत्य जो अंदर है वो बाहर के लोगों से, चीजों से, स्थानों से मिल भी नहीं सकता। इसलिए हतोत्साहित होकर सारे भिक्षु अपने गांव वापस लौटे और गांव पहुंचने से पहले एक नदी थी और नदी उफान पर थी, नदी में पुर था और जब नदी पर जो पुल था उस पुल को पार कर वो इस ओर आ गए। उन्होंने सोचा कि एक बार गिन तो ले हम लोग सब ठीक ठाक पहुंचे कि नहीं पहुंचे, और उन्होंने गिनती चालू की और उनको बहुत दुख हुआ कि हम लोग में से एक सत्य का खोजी खो गया और लोग विलाप करने लगे। दूसरे ने गिनती की, फिर भी एक कम था, नौ ही थे। तीसरे ने गिनती की, फिर भी नौ ही थे और वो दसों के दसों बैठकर रोने लगे कि हम में से सत्य का एक खोजी खो गया। एक यात्री वहां से गुजरता है, वो कहता है कि तुम क्यों विलाप करते हो? वो कहता है हम दस थे, एक खो गया। तो वो यात्री गिनता है, गिनती दस ही थी और वो उनको कहता है तुम दस ही हो, और इतना कहकर वो चला जाता है। और ये दस लोग फिर से गिनती करते हैं पर पाते हैं कि नौ ही है और जोर जोर से रोने लगते हैं कि हमारा एक यात्री, हमारा एक साथी खो गया। बार बार गिनती करते हैं परंतु फिर भी एक तो खो गया। उस नदी के पुल के पास एक चट्टान होती है और चट्टान से नीचे पानी थोड़ा सा स्थिर होता है, तो एक भिक्षु जाकर देखता है कहीं पानी में तो नहीं गिर गया, और वो ऊपर से देखता है तो उसे अपनी ही परछाई दिखाई देती है और जो स्थिर है, और वो कहता है कि मिल गया मिल गया, हमारा एक साथी खो गया और मर गया, यही उसकी परछाई, उसकी लाश नीचे दिखाई दे रही है। वो दूसरे साथियों को आकर कहता है और एक एक ही व्यक्ति जा सकता है उस वहां पर ऊपर चट्टान के पास, और जो जो जाता है नीचे देखता है एक परछाई, और वो कहता है हमारा एक साथी खो गया, और फिर रोने लगते हैं और फिर विलाप करने लगते हैं और कहते हैं कि अब अंतिम संस्कार तो करना चाहिए परंतु मृत देह तो है नहीं, तो क्या करें? तो वो सोचते हैं बिना मृत देह की उसका अंतिम संस्कार करते हैं, तो लकड़ियां लाते हैं और लकड़ियां रखते हैं और आग जलाते हैं और अंतिम संस्कार चालू करते हैं और रोने लगते हैं क्योंकि सत्य की खोज का एक साथी खो गया है। वो यात्री जो गुजर गया था वो फिर से आता है, वो कहता है अब क्या हुआ, किसका अंतिम संस्कार कर रहे हो, किसका दाह संस्कार कर रहे हो? वो कहता है हमारे एक साथी खो गया है। उसे यकीन नहीं होता है, वो फिर से गिनती करता है और कहता है पागल हो तुम, जिसका अंतिम संस्कार कर रहे हो वो तुम खुद स्वयं हो, तुमने जो प्रतिबिंब देखा वो तुम्हारा ही है और तुम उस प्रतिबिंब को पानी में देख सके स्वयं में ना देख पाए। और वो दसों इस बात को सुनकर फिर खुश हो जाते हैं कि वो जो खोया हुआ साथी था सत्य की खोज का, और जिसकी हमें खोज थी और जिसका हमने ही अभी अभी दाह संस्कार कर दिया, वो मिल गया और वो मैं ही हूं। और सत्य अंतर मन में ही मिलेगा, और वो पहले जो खोज करते थे बाहर, वहां नहीं मिला, अपने ही गांव में सत्य मिला, जहां से निकल पड़े थे सत्य की खोज में, वहीं आकर सत्य मिल गया। इसी तरह की कहानी एक किताब अल्केमिस्ट, काफी प्रसिद्ध कहानी है, उसमें भी है। एक चरवाहा है शेंशियागो नाम का, उसको बार बार स्वप्न आता है, स्वप्न में इजिप्ट के पिरामिड दिखते हैं, वहां पर खजाना गड़ा हुआ दिखता है, सोचता है मुझे जाना चाहिए, और निकल पड़ता है, और उसके बीच में बहुत सारे लोग उसे मिलते हैं, कभी राजा मिलता है, कभी कोई मिलता है, कभी कोई, कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है, और अंततः उस पिरामिड तक पहुंचता है, और वो खजाना भी मिलता है, परंतु वो डाकू आते हैं, खजाना लूट लेते हैं, और वो डाकू उसे पूछता है, वो डाकू उससे पूछते तुम कौन हो, यहां क्यों आए, वो कहते हैं मैं वहां से आया हूं, एक जगह से जहां खंडर है, एक चर्च है वहां खंडर है, वहां से आया हूं। तो वो डाकू उसको कहते हैं कि खजाना तो वहीं गड़ा हुआ है, यहां नहीं है, ये असली खजाना नहीं है, असली खजाना वहां है जहां से तुम आए हो। और वो वापस आता है, देखता है खजाना वहीं था जहां उसने स्वप्न देखा था। तो कहने का भाव, हम कौन है, ये ज्ञान कहीं बाहर से नहीं मिलेगा, बाहर से सूचनाएं मिल सकती है, परंतु जो हम है वो हमारे ही अंदर समाया हुआ है। जो दसवां है वो कौन है, मैं ही हूं, और इसी मैं कौन हूं की तलाश जीवन भर मनुष्य करता है, और बाबा ने आके हमको यही बताया। दो उत्तर दिए, सबसे पहला उत्तर ये दिया कि तुम कौन हो, और दूसरा उत्तर दिया मैं आत्मा हूं, ये पहला प्रश्न का पहला उत्तर है, और दूसरा तुम कौन सी आत्मा हो। केवल आत्मा हूं कहने से नहीं होगा, क्या उत्तर दिया, तुम आत्मा तो हो परंतु कौन सी आत्मा हो। तो मुरली का दूसरा भाग, पंजाब ग्रुप से मुलाकात, चार बहुत ऊंचे ऊंचे सम्मान दिए हैं बाबा ने। सबसे पहले हम लेंगे मास्टर ज्ञान सूर्य। सूर्य क्या क्या करता है, सूर्य के 10 कर्तव्य बताओ। सूर्य रोशनी देता है, सूर्य क्या करता है, अंधकार को मिटाता है, सूर्य क्या करता है, कीटाणुओं को नष्ट करता है, सूर्य क्या करता है, रात को खत्म करता है, सूर्य उदय होता है तो क्या होता है, फ्रेशनेस। सूर्य क्या करता है, एनर्जी देता है, सूर्य क्या करता है, निर्भय बनाता है, रात के अंधेरे में डर लगता है। सबको किसका इंतजार होता है, सूर्योदय का, क्योंकि रात में भय लगता है, कुछ भी दिखाई नहीं देता है, प्रकाश में सब दिखाई देता है, निर्भय बनाता है सूरज, और आकर्षित करता है, और क्या करता है, राह दिखाता है, और क्या करता है, विटामिन डी, और क्या करता है, साइकिल, वाटर साइकिल सूर्य के वजह से, और क्या करता है, क्या करता है, फोटोसिंथेसिस, ये थोड़े हायर है सारे। तो सूरज बहुत कुछ करता है, समय, हाँ समय भी दिखाता है सूरज, और क्या करता है, दिशा दिखाता है, इन अच्छा सा इंद्रधनुष सूरज की वजह से होता है, और बादलों को खींच के लाता है, और सौंदर्य का प्रतीक है सूरज। सूर्योदय होता है तो कैसा सौंदर्य होता है, सूरज उदय होता है, प्रकृति को परिवर्तित करता है, और सूर्य केंद्र है सोलर सिस्टम का, सारा सोलर सिस्टम जो है कहां घूम रहा है, सूर्य के इर्द गिर्द घूम रहा है। तो सूर्य बहुत महत्वपूर्ण है, हम कौन है, मास्टर सूर्य है, ये अनुभव करना कि मैं सूर्य हूं, मैं इस सृष्टि का केंद्र हूं, मेरे इर्द गिर्द सब घूम रहे हैं, सारे ग्रह सारे नक्षत्र सब कुछ, ये त्रिभुवन सब कुछ मेरे इर्द गिर्द है, मैं इस सृष्टि का केंद्र हूं। अंधकार की सृष्टि को नाश करने वाला मैं प्रकाश की सृष्टि हूं, अंधकार की सृष्टि का नाश करने वाला मैं प्रकाश की सृष्टि हूं। सूरज अर्थात आलोक, सूरज अर्थात उजियाला, सूरज अर्थात रोशनी, सूर्य अर्थात प्रकाश, सूरज अर्थात दीप्ति। तो सूर्य नमस्कार करते हैं लोग, सूरज को भगवान समझते हैं, सात घोड़ों के साथ सूर्य का रथ दिखाते हैं, सूर्य भगवान। तो वो सूर्य भगवान कौन है? हम ही है। सुबह सुबह उठकर सूर्य नमस्कार किसके लिए कर रहे हैं? अपने स्वास्थ्य के लिए और मेरी पूजा के लिए। तो तो मैं सूर्य हूं। तो सूर्य अर्थात सूर्य का कर्तव्य है प्रकाश फैलाना, अंधकार को नष्ट करना, रात को दिन बनाना। ये हमारा क्या है? ऑक्यूपेशन है। ये क्या हमारा प्रोफेशन है? ये क्या हमारा धंधा है? इसको भूलना नहीं। जैसे वो लोग अपना रात को उठाओ किसी इंजीनियर को, पूछो तुम कौन है, तो कहेगा मैं इंजीनियर हूं, उसको रात में भी याद है। डॉक्टर को हिलाओ तो उसको याद रहता है, वो भूलता नहीं है अपने प्रोफेशन को। तो उसी तरह बाबा ने कहा ये तुम्हारा प्रोफेशन है, कौन सा? प्रकाश फैलाना। कल की मुरली में अंधियारे के बारे में एक वाक्य था, कल हाँ कल सोमवार, कौन सा अंधियारा तुमको मिटाना है? जो उत्तर देगा उसको बख्शीश मिलेगा। कौन सा अंधियारा तुमको मिटाना है? कल की साकार मुरली। सर्वव्यापी का अंधियारा मिटाओ। कौन सा अंधियारा? सर्वव्यापी का अंधियारा। ये धारणा है संसार में, सर्वव्यापी का अंधियारा। तो प्रकाश फैलाना है, ज्ञान फैलाना है। अज्ञान छाया हुआ है सारे संसार में, ऐसे हर मन में ज्ञान का प्रकाश लाना है, वो हम है। ये हमारा बिजनेस है, ये हमारा धंधा, ऑक्यूपेशन, तिजारत, ये हमको करना है। और जैसे जो अंध प्रकाश फैलाने वाला है वो खुद अंधकार में नहीं रह सकता, वो खुद अंधकार में नहीं रह सकता। जैसे फायर ब्रिगेड, वो आग बुझाने वाले हैं, खुद ही उनको आग की सेक नहीं लग सकती, आग की चपेट में वो नहीं आ सकते। उसी तरह हम भी क्या स्वमान लेना है कि मैं प्रकाश हूं, मास्टर सूरज हूं, सूर्य हूं, मुझसे चारों ओर किरणें फैल रही है। असंख्य दिव्य रश्मिया विकीर्ण दिव्य दाहसी, सपूत मात्र भूमि के रुको न शूर साहसी। गीते ना, हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती। अमर्त वीर पुत्र है दृढ़ प्रतिज्ञ सो चलो, प्रशस्त पुण्य पंथ है बड़े चलो बड़े चलो। तो हम सूरज है, हम मास्टर सूरज है, बढ़ने वाले हैं, रुकने वाले नहीं, आगे चलते जाना है और संसार को प्रकाशित करना है। जहां हम जाए वहां ज्ञान का प्रकाश फैलाना है, हमारी वाणी से, हमारी संकल्प से, हमारे कर्मों से प्रकाश फैले, लोगों को लगे ये क्या है, ये कौन है, हर चीज में सेवा समाई हो। तो यह सबसे पहला सम्मान है हमारा। मैं कौन हूं? आत्मा हूं। कौन सी आत्मा हूं? मास्टर ज्ञान सूर्य हूं, प्रकाश फैलाना, यह पहला सम्मान। दूसरा सम्मान, यह तो वैसे तीसरा ग्रुप था। पहला ग्रुप में क्या कहा? मैं कौन सी आत्मा हूं? कमाऊ। कौन सी आत्मा हूं? कमाऊ आत्मा हूं। और सबसे बड़ी कमाई कौन सी है हमारी? याद ही कमाई है, याद की कमाई करनी है। जैसे संसार के लोग होते हैं, उनको कितनी खुशी होती है 1 तारीख को, क्यों खुशी होती है? पेमेंट, सैलरी, बहुत खुशी होती है। तो क्यों? क्योंकि सैलरी, कमाई हो रही है। तो हमारी सैलरी कहां हो रही है? हर कदम में पदम है, तो याद ही क्या है? कमाई है। इसलिए ये समय किसमें नहीं गवाना है? खाया पिया और गवाया और उड़ाया। यहां आए हैं तपस्या के लिए, सारी सुख सुविधाएं मधुबन में है, यहां आए तपस्या नहीं की, खाया पिया और सोया, तो बोझ चढ़ेगा, बहुत बड़ा बोझ। सन्यासी के लिए कहा जाता है भक्ति मार्ग में, वो खुद कमाई नहीं करता है, सन्यासी कमाई नहीं करता है, गृहस्थियों से खाता है, इसलिए उसके ऊपर ज्यादा जिम्मेवारी है गृहस्थियों का कल्याण करने की, आध्यात्मिक प्रकाश उनको देने की, यही उसका कर्तव्य है। अगर वो खाली खाता रहे उनसे और करे कुछ भी ना, इसके लिए ऐसे साधु ऐसे सन्यासी कुछ काम के नहीं है, जो संसार के लिए कुछ भी नहीं कर रहे, केवल खाते रहते हैं संसार से लेके, संसार का क्या कल्याण कर रहे, संसार के लिए क्या कर रहे। असन्यासी सिट्स ऑन द हिट्स ऑफ वेदास, वेदों के सिर पर खड़ा है वो, उसके पास ज्ञान है और वो ज्ञान का कुछ भी नहीं कर रहा है, संसार के दुख को दूर नहीं कर रहा है, तो ऐसा साधु कुछ काम का नहीं है। तो जो हम यहां हैं और कुछ तपस्या नहीं चालू है, ज्ञान का चिंतन मनन नहीं चालू है, संसार को सकाश देना नहीं चालू है, तो संसार के लिए क्या कर रहे हैं? जो कुछ कर रहे अपने लिए कर रहे हैं, फिर ऐसा जीवन किस काम का जो स्वार्थ पर आधारित है। हमारा जीवन किसके लिए है? दूसरों के लिए, प्रत्येक पल दूसरों के लिए, तो दूसरों का कल्याण करने में लगना है हर प्रकार से। तो बाबा ने कहा खाया पिया और कमाया, ये इसको क्या कहते हैं? कौन सा ग्रुप बताया था वो? कौन सा? के पी एम, खाओ पियो और मौज करो। ये किसने बनाया? अच्छा के पी एम, वो तो उन्होंने बताया कल, तो ये ग्रुप पुराना ग्रुप है ना। खाओ पियो और मौज करो, आलसी, जैसे एक आलसी व्यक्ति होता है, सुबह 12 बजे उठता है, फिर भोजन करता है अच्छे से और फिर सोता है, फिर शाम को उठता है, भोजन करता है, फिर सोता है। उसका तोता जो होता है वो रोज देखता है, उसको बड़ी दया आती है, और उसका दोस्त भी होता है, तो तोता उससे कहता है कि तुमको सो सो के और खा खा के बोर नहीं होता है? तुम करते क्या हो आखिर दिन भर? तो वो व्यक्ति कहता है मेरे दो दोस्त है, सुबह जैसे उठता हूं वो दो दोस्त आ जाते हैं, एक लेजीनेस, एक हार्डवर्क, एक उद्यम, एक परिश्रम, और दूसरा आलस। और आलस मुझसे कहता है, उद्यम मुझसे कहता है तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें तो काम करना चाहिए, उठो जागो, उठो काम करो। पर आलस कहता है सारी दुनिया तो काम ही कर रही है, तुम भी वही करो तो क्या, तुम में और उनमें क्या अंतर, तुम कुछ वो करो जो दुनिया नहीं कर पाती है, इसके लिए सोए रहो। तो वो व्यक्ति कहता है ये दोनों आपस में कंटिन्यूस बात करते रहते और मैं उनकी बातें सुनते सुनते मेरा कब दिन गुजर जाता है पता ही नहीं चलता। तो खाया पिया और सोया। एक स्कूल में कंपटीशन होती है कि सबसे आलसी जो होगा उसको बख्शीश मिलेगा, और ऐसे 3 विद्यार्थियों को चुना जाता है, और फिर फर्स्ट को स्टेज पे बुलाया जाता है, प्राइज दिया जाता है जो सबसे ज्यादा आलसी है, दूसरे को भी नाम पुकारते हैं, दूसरे को बख्शीश दिया जाता है, तीसरे का नाम पुकारते वो कहता है मैं नहीं आऊंगा, दूसरे के हाथ में दे दो। तो अब बताओ सबसे ज्यादा आलसी कौन हुआ? तो खाओ पियो मौज करो, उठो थोड़ा बहुत अमृत वेला कर लो, मुरली वगैरह सुन लो, उसके बाद में जितना अमृत वेला नहीं किया और जितनी मुरली नहीं सुनी उससे डबल नाश्ता, और फिर थोड़ी बहुत सेवा कर ली, यहां से वहां चीजें रख दी, इधर की फाइल उधर और उधर का वो उधर, शरीर कुछ ज्यादा हिला भी नहीं, पेट का पानी भी नहीं हिलता है, और फिर भोजन आ गया, फिर 4 बजे और कुछ आ गया, फिर रात को वो और आ गया, और ये है ब्राह्मण जीवन। आउटपुट कितना है? संसार को कितना दिया, लिया कितना, सारा काम लेने में जा रहा है। माउंट आबू में एक दिन रहने की कीमत कॉस्ट कितनी है? होटल में, हिल्टन होटल, कोई भी होटल, एक दिन कमरे का चार्ज, पानी, इलेक्ट्रिसिटी, तीन टाइम का भोजन, चलो टोली और बीच में सैंडविच वगैरह छोड़कर गन्ना रस, बेल का रस, आम का जूस, चाय और वो सब छोड़कर, और बीच बीच में और जो नया नया मिलता है, एक दिन का रहने का चार्ज कितना है? और यदि हम यहां हैं और सेवाएं कुछ नहीं और तपस्या कुछ नहीं तो बोझ है। इसलिए बाबा कहते खाया पिया सोया उड़ाया तो कमाया क्या? समय नाजुक आने वाला है, कमाई अभी से हो तुम्हारे पास तो सबसे बड़ी कमाई कौन सी है? याद की कमाई, तपस्या की कमाई, अपने आप को तपस्वी बनाना है। बाहर की सारी चीजें एक तरफ, ये जो कुछ दिख रहा है अंदर से तपस्या की लौ, निर्धूम लौ जलती रहे, ज्ञान योग तपस्या की शिखा, यही हमें संतोष देगा। नहीं तो बाहर का कितना भी भोगो कभी तृप्ति नहीं है उसमें। भारत में था चरवाक, चरवाक अर्थात खाओ पियो और मौज करो, यही सिद्धांत था और इसी को अधिकतर लोगों ने स्वीकार कर लिया क्योंकि ऊपर से ठीक ठाक दिखता है ये। और विदेश में था इपिक्यूरियन, इपिक्यूरियन फिलॉसफी अर्थात खाना पीना बस। तो ये हमारे जीवन का लक्ष्य नहीं, हमारे जीवन का लक्ष्य है संयम, तपस्या, त्याग, वैराग और आंतरिक, बाहर से दिखावे की आवश्यकता नहीं। तो हम कौन है? कमाऊ आत्मा, कमाऊ बच्चे है, कमाई करने वाले। और सच्ची कमाई ये है दुआओं की कमाई। कौन कौन सी कमाई करनी है? एक तो याद की कमाई, दूसरा दुआओं की कमाई, तीसरा पुण्य कर्म, चौथा कौन सा कमाई करनी है दिन भर में? पुण्य कर्म, श्रेष्ठ कर्म, निस्वार्थ कर्म और कर्मों की कमाई, और कमाई शुद्ध संकल्पों की, सकाश देने की और शुभ पावना कमाई, कमाई इनकम। इनकम किस किस के लिए कहा है बाबा ने? ज्ञान को इनकम कहा है। ज्ञान सबसे बड़ा इनकम तो तुम्हारा ज्ञान है। ज्ञान कितना भरा अपने अंदर, नए नए ज्ञान के पॉइंट्स भरते जाना है, नए नए ज्ञान का चिंतन, नए नए ज्ञान का अध्ययन, सब कुछ भरते जाना, ये बहुत बड़ी कमाई है। तो ज्ञान, दुआएं, इनकम, इनकम सबसे बड़ा इनकम, प्यूरिटी है, पावर्स, शक्तियां, प्यूरिटी की कमाई जमा करनी है। जमा तो कर रहे हैं, प्यूरिटी जमा कर रहे हैं और फिर लीक हो जाती है कहीं ना कहीं से। इसके लिए वही के वही है, ये लेवल था एक साल पहले, आज भी वही है। क्यों? क्योंकि इतना भर तो रहे पर यहां से लीकेज भी हो रहा है कहीं, कितना सारा वो जा रहा है, छेद है इतने सारे, कहां कहां से बह रही है सारी प्यूरिटी। तो इसका जो स्तर है वो बढ़ते जाए, प्यूरिटी वो ग्राफ ऐसा हो, ऐसा नीचे ऊपर नीचे ऊपर वाला ना हो, प्यूरिटी क्या होती जाए हर दिन आगे 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 बढ़ती जाए। तो ये कमाई है, ये था पहला। दूसरा, दूसरा सम्मान, तुम कौन हो? निर्भय आत्मा हो। ये 84 की मुरली है, 84 के दंगे, उसके बाद में पंजाब से बाबा मुलाकात कर रहे हैं। क्या कहा उनको? नथिंग न्यू, तुम्हारे लिए कुछ भी नया नहीं है। ये क्या है? नथिंग न्यू। तुम कौन हो? विजयी आत्मा हो। तुम कौन हो? शेर आत्माएं हो। तुम कौन हो? शिव शक्तियां हो। और जिसके सिर पर छत्र छाया है उसे कुछ नहीं हो सकता। और तुम बाप के स्नेही हो, और तुम बाप की याद में अगर हो तो तुम्हें कुछ नहीं होगा। तो शिव शक्ति हो, डरने वाले नहीं हो, निर्भय हो और छत्र छाया में। आज के वरदान में क्या है? सेफ कौन है और तो छत्र छाया की लकीर, उसके ऊपर छत्र छाया, नीचे लकीर। इसके अंदर जो रहते हैं उन्हें कोई कुछ नहीं कर सकता, किसी की हिम्मत नहीं कोई कुछ करे। तो निर्भय, निर्भय बनना है। और सबसे बड़ा भय सूक्ष्म होता है, अंतर मन में समाया हुआ है, अज्ञात का भय, क्या होगा पता नहीं, कुछ तो नहीं हो जाएगा, कुछ ऐसा तो नहीं होगा, कुछ वैसा तो नहीं होगा, भयता है। इसी भय से निपटना है। उसके बाद में अगला सामान मैं पंछी, कौन से पंख है? हिम्मत और उल्लास, ये दो पंख है। ये दो पंख होंगे तो क्या होगे? उड़ोगे, उड़ती कला होगी, असंभव संभव होगा, मुश्किल आसान, नीचे जो ऊपर, अगर ये पंख है तो। नीचे रहने का अनुभव तो कर लिया ना, क्या पाया? कितना अच्छा प्रश्न पूछा है। नीचे रहने का अनुभव हर एक ने यह अनुभव किया होगा जब हम याद में नहीं है बाबा की, कैसी मन की अवस्था होती है। हर एक ने अनुभव किया होगा जब व्यर्थ संकल्प का तूफान अंदर है, क्या अवस्था है। क्या विश्व की सेवा कर रहे हैं, मुरली भी नहीं पढ़ पाते, वहीं घूम रहे हैं, एक ही घंटे से एक ही पेज पढ़ रहे मुरली का, वो भी इसलिए क्योंकि सुनानी है या कुछ और कराना है उसका, पर घूम वहीं गोल गोल रहे, कुछ भी कॉन्सेंट्रेशन नहीं सारा। जब जब देहभान आ जाता है तब क्या हालत होती है? हेडेक होता है, कॉन्सेंट्रेशन खत्म हो जाता है, पश्चाताप होता है, और क्या होता है देहभान में? बेचैनी होती है, आत्मविश्वास कम होता है, ब्राह्मण जीवन में रस खत्म हो जाता है, इंटरेस्ट ही नहीं लगता है, खुशी बिल्कुल गायब हो जाती है। जैसे कल ओपीडी में एक भाई आए थे, कहीं दूर से कोई एक भाई, इतने दुखी थे, कब से ज्ञान में है पर दुखी बहुत थे। हमने कहा दुखी क्यों है? वो कहने लगे हमारी बेटी भाग गई किसी के साथ, इसलिए दुखी हूं। क्या करूं, मन ही नहीं लगता, ना मुरली सुनने को इच्छा होती है, ना अमृत वेले उठता तो हूं, पर वो बस वो बेटी की याद आती रहती है। तो बहुत सारी चीजें, कुछ ना कुछ संसार में हजारों चीजें होती रहेगी, तो क्या हम दुखी होते रहे? आग लगे बस्ती में और तुम रहो अपनी मस्ती में, कुछ ना कुछ तो होगा ना, सब कुछ हमारे अनुसार होगा ऐसा हो? अगर हो भी जाए तो हम ही दुखी हो जाएंगे, जैसा मैं कह रहा हूं वैसा सब कर रहे घर के लोग, ऐसा होगा? बोर भी हो जाएंगे, हाँ, कोई हलचल ही नहीं है, जैसा हम बोले जा रहे वैसे वैसे हो रहा है, कोई आवाज नहीं उठाता विद्रोह की। तो हम कौन हो, कौन है? उड़ने वाले। नीचे रहकर देख लिया क्या हुआ, नीचे फिर से आ जाएंगे, अगर जो नीचे रहे उससे सीखे नहीं तो। जो पिछली बार गिरे थे अभी बहुत ऊपर है, पर ऊपर रहकर नीचे जो गिरे थे उसका चिंतन करना है कि क्या क्या हुआ था उस समय और क्यों गिरे थे, नहीं तो आज ऊपर है कल वापस वहीं पहुंच जाएंगे जहां कल थे। इसके लिए ऊपर रहकर भी ये चिंतन करना है कि मैं गिरा था तो क्यों गिरा था, क्यों व्यर्थ संकल्प आ गए थे, क्यों बेचैन हो गया था, क्यों कॉन्सेंट्रेशन डिस्टर्ब हो गया था, क्यों मुरली में इंटरेस्ट खत्म हो गया था, क्यों उठने के बाद अमृत वेला करने की इच्छा ही नहीं हो रही थी, क्यों सेवाओं में इंटरेस्ट चला गया था, क्यों किसी से बात करना अच्छा नहीं लग रहा था, क्यों डिप्रेशन आ गया था, क्यों टाइम वेस्ट कर दिया था। ऊंची स्थिति पर बैठकर इसका चिंतन करना है, गिरे क्यों थे, नहीं तो फिर जब गिरेंगे तो यही और ये स्थिति इधर की इधर सेम हो जाएगी, सेम, और फिर इंतजार करेंगे कुछ हो जीवन में ताकि फिर से उठूं, कोई आ जाए फिर से उठा दे, कोई हाथ दे दे, और जब तक वो नहीं आता, आएगा जरूर, पर नजून में चला जाए, किसी रिट्रीट में चला जाए, कहीं उठेगी तो जरूर आत्मा। ब्राह्मण आत्मा ज्यादा समय तक नीचे स्थिति वाली नहीं रह सकती, नीचे स्थिति में उठ जाएगी तुरंत, परंतु उतना समय तो वेस्ट हो गया ना, उसका क्या, वो समय तो वेस्ट हो गया। दो लोग साथ में जा रहे हैं, एक को बहुत सारे आकर्षण मिले, एक आगे चला गया, एक इधर घूमने चला गया और फिर पहुंचा यहां, अब ये तो पीछे हो गया ना, वो आगे वाला आगे। औरों को भले लेके आए पर पावर ऐसी नहीं होगी, इधर घुस गया, पहले एक था अभी चार बन गए, अभी चार मिलके चल रहे, धीरे 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 चल रहे, जिसको जाना था वो तो आगे चला गया। वो ऊपर के बहाने हैं सारे, अंदर से आत्मा जानती है मैं गिर चुकी हूं, चाहे कि ऊपर से कितने भी लिपापोती करे, अंदर से पता है उसे ये श्रीमद है ही नहीं, अंदर से वो भाव है कि गिर चुकी हूं। चाहे ऊपर से चार लोगों को ले गया है और ऊपर से ये कहे, ये जब से आया ना तब से हम लोग बहुत ज्यादा तीव्र पुरुषार्थी बन गए, ये एडवांस पार्टी की आत्मा है जो आई है घर में। सारे बीके माँ बाप को ये भ्रम ही है कि हमारे घर में जो आ रहा है वो एडवांस पार्टी वाला है, और फिर जब वो बड़ा होकर अपने रंग दिखाता है तब होश में आते हैं कि ये तो कुछ और ही निकला है, ये तो बचपन में तो बहुत ज्ञान सुना था, संदली पर बैठकर टोली विली खिलाता था, मुरली भी पढ़ता था, और पता नहीं आगे चल के उसके तेवर ही बदल गए। तो इस भ्रम में मत रहना कि बाकियों को लेके आएंगे और वो एडवांस पार्टी वाला कोई आएगा, उनके भी लिए तो जन्म देने के लिए भी तो माँ बाप चाहिए, कैसे ऐसे तर्क है। वो कहाँ जाएंगी यज्ञ की आत्माएं, कितने रहम दिल। पर ये स्वयं को गिराना है, उनकी चिंता तुमको करने की आवश्यकता नहीं है, तो आगे बढ़ते जाना है। तो ये कौन सा समान था, मैं उड़ने वाली हूं, तो ऐसे चार समान है। पहला बताया धर्माऊ, धर्माऊ नहीं कमाऊ। कमाऊ शब्द थोड़ा धर्माऊ से मिलता है, मैं कमाऊ कमाना है, कमाई करनी है सारे दिन भर। जैसे कोई दुकानदार होता है रात में सोने से पहले अपने गिनता है तो उसको कितनी खुशी होती है, पूरा गिनते रहता है इतना हो गया आज माल, इतने पैसे आ गए, इतने फायदा हो गया, और नुकसान हो गया तो बहुत ज्यादा दुखी होता है, वो कहता है दूसरे दिन तो और ज्यादा बहुत करना पड़ेगा कुछ, हाँ कुछ तो करेगा। तो हमको भी कमाई की तरफ ध्यान रखना है, मेरी आज सूक्ष्म अलौकिक कमाई कितनी हुई, अमृत वेला किया कमाई कितनी हुई, अनुभव हो कि कमाई हो गई है, चलो तो जेब बजे छन छन छन, आवाज आए रामचंद्र भाई, ठीक है ना। आवाज आने लगे। तो सबसे पहले मैं कमाऊ आत्मा हूं, दूसरा बताया मैं निर्भय आत्मा हूं, बहादुर आत्मा हूं, निडर आत्मा हूं, किसी से भयभीत नहीं हूं, शेर शक्तियां ये सारी बातें। उसके बाद में तीसरा उड़ने वाली हिम्मत, हिम्मत चाहिए इस ज्ञान मार्ग में, बहुत ज्यादा हिम्मत चाहिए, और उल्लास, उमंग उत्साह कमी ना हो, चाहे कुछ भी हो जाए पर उमंग उत्साह नहीं छोड़ना है, बस गिरो 10 बार गिरो, उठकर फिर खड़े हो जाओ। तो करते रहना, कितनी बार भी गिरो, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती दीवारों पर 100 बार की गिरती, मन का विश्वास रगों में साहस भरता, गिरकर चढ़ना चढ़कर गिरना ना करता, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं जाती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो कोशिश करते जाना है, गिरो 10 बार फिर से उठो, गिरो फिर उठो, गिरो फिर उठो, माया भी परेशान हो जाए इसका करूं क्या, इतनी बार हराती हूं फिर भी ये इसके हौसले तो देखो। माया डिप्रेशन में चली जाए, इतनी बार इसको हराती हूं फिर भी उठ के खड़ा होके आता है, पता नहीं किस खेत की मूली है, किस मिट्टी का बना है, कौन सी वो क्या, नहीं नहीं बचपन में क्या पिलाते हैं, जन्म गुट्टी क्या पीता है पता है, बाल जन्म गुट्टी पता नहीं कौन सी पीता है, बार बार उठ के खड़ा हो जाता है। तो ऐसे उठ के खड़े होना है, पहले तो गिरना ही नहीं हो, पर गिरे तो फिर से उठ के खड़े होना है। उसके बाद में लास्ट बताया चौथा, मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूं। क्या करना है, बहुत बड़ा काम है, इसलिए एक अभ्यास ये भी है, सूरज को जाके देखना है आज क्या करता है, कैसे उगता है, कैसे प्रकाश फैलाता है, कैसे रंग बदलता है, कितना सुंदर दिखता है। तो सूरज को देखना है और ये कहना है कि ये जो है ना ये मैं ही हूं, ये जो सूरज है ये मैं ही हूं, वो मेरा प्रतिबिंब है, असली इधर है वो नकली है। तो मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूं। ओम शांति।